ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लो सव्साहूणम् ईसु पञ्चणमो यारो सव्पावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलि पण्णत्तु धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्त लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलि पण्णत्तु धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलि पण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल मंद समीर बयार मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली तो पूर्व सत्र में अपन ने देखा कि आचार्य वट्टकेर स्वामी मूलाचार ग्रंथ में लिखते हैं कि जो देने योग्य है वह अरहंत भगवान दे चुके हैं और वह क्या है तो उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं दंशन नाण चरित तस्सते विहस्य उवेसु दर्शन ज्ञान और चरित्र इन तीनों का उपदेश अरहंत भगवान दे चुके हैं जम ते ही दुदादव्वम तम दिन्नम जिनवरे ही सव्वे ही सभी तीर्थंकरों ने जो उनके द्वारा देने योग्य था वो दे दिया और वो क्या था तो आचार्य कहते हैं दंशन नाण चरित्त से एस तिविहस्य उवेसु दर्शन ज्ञान और चरित्र का यानी इन तीन का यह उपदेश उन्होंने ही दिया है। तो अब यहां पर प्रश्न आता है कि ठीक है, षडावश्यक अधिकार में जब एक मुनिराज भगवान की भक्ति करके अंत में कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे बोधि और समाधि प्रदान कीजिए, तब आचार्य महाराज ने इसका विस्तार करते हुए लिखा है कि ये अनुभव वचन है। ये जो कथन है मुनिराज का कि हमें बोधि और समाधि प्रदान करें, ये अनुभव वचन है, न सत्य है न असत्य है। ऐसे वचन को अनुभव वचन कहते हैं जो सत्य की श्रेणी में भी नहीं गिने जा सकते, जो असत्य की श्रेणी में भी नहीं गिने जा सकते। और फिर कहते हैं कि नहीं क्षीण राग द्वेषा जिना ददते समाधिं बोधिंच, यदि दाने प्रवर्तेरन सरागत द्वेषा स्युरिति। बोलते हैं कि जिन्होंने राग द्वेष का विनाश कर दिया, जो वीतरागता को प्राप्त कर चुके हैं, वो समाधि और बोधि प्रदान नहीं कर सकते, और यदि वो दान में प्रवृत्ति करेंगे, सबको बांटने लग जाएंगे, तो सराग द्वेष हो जाएंगे, वीतराग नहीं रह जाएंगे। जो उनके द्वारा देने योग्य था वो दे चुके हैं, अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का उपदेश वो दे चुके हैं। ये एक कथन था, यानी यहां प्रसंग ये था कि साधु जब भगवान से कह रहे हैं कि मुझे बोधि और समाधि प्रदान करें, तब ये सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है। पहली बात आचार्य महाराज ने ये कही कि वो सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, और फिर कहते हैं कि वे राग द्वेष का क्षय कर चुके हैं, इसलिए वे बोधि और समाधि प्रदान नहीं करते। यदि दान में प्रवृत्ति करने लग गए तो वो सराग हो जाएंगे, उनके अंदर राग द्वेष स्वीकार करना होगा। ये दूसरी बात कही। तो ये सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, ऐसा जो कथन है उसका अभिप्राय समझने के लिए अपने को थोड़ा विचार करना होगा कि भगवान जो देना था दे चुके हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान ने दिया तो है, और जिसने कुछ दिया हो वो अदाता नहीं हो सकता। क्या दिया है? तो बोल रहे उपदेश दिया है, बहुत अच्छी बात है, उपदेश दिया है। फिर उनकी दान शक्ति के बारे में अपन विचार करते हैं कि दान शक्ति के विषय में, दान लब्धि के विषय में शास्त्र में क्या कथन है। तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में जहां पर नौ क्षायिक भावों का वर्णन है, वहां आचार्य पूज्यपाद स्वामी देखिए क्या कहते हैं। दानांतरायस्यात्यंत क्षयात् अनंत प्राणी गणानुग्रह करम क्षायिकम अभयदानम। जिनेंद्र भगवान चार घाती कर्मों का क्षय कर चुके हैं, उन चार घाती कर्मों में जो अंतराय कर्म था उसके पांच भेद थे, उन पांच भेदों में प्रथम भेद दान अंतराय कर्म था, जो दान में अंतराय अर्थात विघ्न डालता है वह। आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं सर्वार्थ सिद्धि में कि उस दानांतराय के अत्यंत क्षय से यानी पूर्णतः नष्ट हो जाने के कारण जिनेंद्र भगवान के पास जो दान शक्ति होती है वो कितनी विशाल होती है, कितनी विस्तृत होती है, उस विषय में लिखा है। अनंत प्राणी गण, अनंत प्राणियों के जो समूह हैं उनका अनुग्रह कर्म, उपकार करने वाला, अनंत प्राणी समूहों का उपकार करने वाला क्षायिकम अभय दानम, क्षय से होने वाला क्षायिक कहलाता है, तो वह दानांतराय के क्षय से होने वाला क्षायिक अभय दान जिनेंद्र भगवान के पास होता है, और मात्र तीर्थंकरों के पास नहीं, जिन जिन ने घाती कर्मों का क्षय किया, इस सातों प्रकार के अरहंतों ने घाती कर्मों का क्षय किया है, इसलिए सभी के पास ये दान लब्धि होती है, क्षयिक दान। और इसमें आचार्य महाराज ने स्पष्टतः कह दिया कि ये क्षयिक अभय दान केवल समवसरण में उपस्थित असंख्यात जीवों को उपदेश देकर उनका उपकार करने वाला दान तक नहीं है। वो कह रहे हैं कि अनंत प्राणी समूह, समवसरण से बाहर जो एकेंद्रीय जीव जो होते हैं उनमें भी जो वनस्पति कायिक होते हैं, जो निगोदिया जीव साधारण वनस्पति, सब प्रतिष्ठित वनस्पति की श्रेणी में आने वाले जो जीव होते हैं इस जगत में, वे ही अनंत की राशि में परिगणित किए गए हैं। शेष जगत के सारे प्राणी असंख्यात की श्रेणी में आते हैं, वे अनंत हैं। तो ऐसे अनंत प्राणियों का अनुग्रह करने वाला क्षायिक अभयदान सभी अरहंतों के पास होता है। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि सिद्धांततः विचार करने पर, मूलाचार चरणानुयोग का ग्रंथ था, वहां पर भाषा का वर्णन था कि साधु अनुभव वचन बोलते हैं अथवा सत्य वचन बोलते हैं। तो अनुभव वचनों में ये भी वचन आते हैं कि हे भगवान मुझे समाधि और बोधि प्रदान करें, ये अनुभव वचन है, सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है, मुझे प्रदान करें, प्रार्थना कर रहे बस। तो प्रार्थना के वचन जो होते हैं वो अनुभव वचन की श्रेणी में आते हैं। यहां पर आचार्य सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय के चौथे सूत्र की टीका करते हुए नौ क्षायिक भावों का विवरण कर रहे हैं, और वहां आचार्य कह रहे हैं कि जो भगवान की दान शक्ति है वह शक्ति इतनी विशाल है कि अनंत प्राणी समूह का उपकार करने में सक्षम, इतने जीवों की वह रक्षा कर सकती है, वह दान शक्ति अभय दान उस शक्ति के प्रभाव से। भगवान प्रदान करते हैं, ये एक कथन हुआ। फिर अपन और भी ग्रंथ देख रहे हैं, एक पार्श्व पुराण है, काव्यात्मक है, और उसकी कई कविताएं बड़ी प्रसिद्ध है, सबके मुंह पर कंठस्थ भी है। जैसे एक काव्य उसका जो 12 भावना है पार्श्व पुराण की, कितने लोगों को कंठस्थ है, राजा राणा छत्रपति हाथी नके असवार, मरना सबको एक जिन एक दिन अपनी अपनी बार, दलबल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। आप अकेलो अवतरे, ये पूरी सब बहुत लोगों को कंठस्थ है। इसके रचनाकार कविवर पंडित भूधर दास जी हैं। भूधर दास जी, ये पार्श्व पुराण बड़ा सुंदर है। ऐसे ही एक और कवि भी हुए हैं जिनका नाम आपने सुना हो, जिन्होंने एक पूजा भी बड़ी सुंदर लिखी हुई है, प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जी। ये सब पुराने कवियों ने बहुत सुंदर सुंदर काव्य रचनाएं की हैं। उन्होंने प्रथम देव अरिहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, फिर गुरु निर्ग्रंथ महंत मुकतिपुर पंथ जू, तीन रतन जगमाही, ये तीनों रत्न के समान है देवशास्त्र गुरु। और फिर उन्होंने तीनों की बड़ी सुंदर पूजा की है, और वह पूजा बहुत सारे लोग मंदिर में करते हैं और अलग अलग लयों में भी करते हैं। हमने अलग अलग लयों में सुना है करते हुए, गुजरात में सूरत के कतार गांव वाले मंदिर में हमने सुना था कुछ लोगों को, कुछ लोगों को और भी कहीं सुना था। अलग अलग लय में करते हैं, है पारंपरिक लय, पर उस लय में पूजा करते हैं। फिर बीच बीच में दोहे आते हैं, जैसे फल से पूजा कर रहे हैं तो फल पूजा का विवरण करने के लिए जो पंक्तियां दी है उन्होंने, लोचन सुरसना घ्राण उर उत्साह के करता रहो, मोपेन उपमा जाय वर्णी, सकल फल गुण सार हो। सो फल चढ़ावत अर्घ अर्थपूर्ण, परम अमृत रस सजू, अरहंत श्रुत सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित पूजा रचू। ये हरि गीते का छंद है। तो ये छंद उनने फलों का वर्णन करते हुए और अपनी पूजा की भावना प्रस्तुत करते हुए लिख दिया। फिर एक दोहा दे दिया उन्होंने। क्या दोहा दिया? जे प्रधान फल फल विषय, पंच परम रसलीन, पंच करण रसलीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। दयानंद राय जी ने भी कई कविताएं लिखी, पंडित दौलत राम जी ने भी बहुत सी कविताएं लिखी, कई भजन लिखे हैं। चिन मूरत दृग धारी की मोहि, रीत लगत है अटापटी। फिर इसी प्रकार भागचंद्र कवि ने भी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं लिखी है। साची तो गंगाय वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा जिन धर्म की कहानी। वही भागचंद्र जी जिन्होंने महावीर अष्टक स्तोत्र लिखा है। और ये दौलत राम जी दो हुए हैं ना, स्मरण में रखिएगा। एक दौलत राम जी वो है जिन्होंने छेड़ाला और फिर अन्य बहुत सारे ऐसे अध्यात्म पद लिखे हुए हैं। भव रंब थंब सम जानी के, मत की जो जी यारी, ऐसा भी भजन लिखा हुआ उन्होंने। और भागचंद जी ने एक ऐसा भी एक भजन लिखा हुआ है, परिणति सब जीवन की तीन भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। दयानंद राय जी ने एक पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति लिखी है, कविवर पंडित दयानंद राय जी, ये बड़े मर्मज्ञ विद्वान थे। पंडित जयचंद छाबड़ा जी ने भी 12 अनुप्रेक्षाएं लिखी है। अब कितने कितने पद्यों का हम यहां पर आपके सामने उल्लेख करें। अभी जो प्रासंगिक पद है वो हम आपके सामने बता रहे हैं कि अरहंत भगवान उपदेश के दाता हैं, ये बात अपन ने मूलाचार में पढ़ी। दर्शन ज्ञान और चारित्र का उपदेश प्रदान करते हैं। फिर अरहंत भगवान अभयदान के दाता है, ये बात अपन ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पढ़ी। और वह उपदेश जो होता है समवसरण में, वहां उपस्थित संख्यात मनुष्य, संख्यात मुनिराज, संख्यात श्राविकाएं, आर्यिकाएं, शूल्लिकाएं, संख्यात तिर्यंचों को दिया जाता है। लेकिन जो देव समूह है वहां पर वो असंख्यात है। इसलिए समवसरण में जो उपदेश होता है दर्शन ज्ञान चारित्र का, वो असंख्यात जीवों के लिए होता है। और क्षायिक जो अभयदान देते हैं भगवान, उसके विषय में राशि का जो परिमाण बताया, जीवों का जो समूह है वो कितना बड़ा है, तो बोले अनंत प्राणी गणानुग्रह करम, अनंत प्राणी समूह का उपकार करने वाला क्षायिकम अभयदान, क्षायिक अभयदान जिनेन्द्र देव प्रदान करते हैं सातो अरिहंत। अब ये जो हमने अभी कवियों का उल्लेख किया, विद्वानों का उल्लेख किया जिन्होंने पद्य रचना करके अपनी बात रखी है, उनमें दयानंद राय जी ने जो पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र लिखा है, आप में बहुत सारे लोग कंठस्थ किए होंगे उस स्तोत्र को। वह स्तोत्र है नरेंद्रम फणींद्रम, सबके स्मृति पटल पर वो बिल्कुल आ गया होगा। और इसको रविंद्र जैन जी ने भी बहुत सुंदर ढंग से गाया है, अन्य भी कई गायक गायिकाओं ने इसको गाया है। भुजंग प्रयात नाम का छंद है। भुजंग जो होता है सर्प होता है, और प्रयात का अर्थ होता है उसकी जो टेढ़ी चाल होती है। वह नरेंद्रम फणींद्रम, इस तरह से उस सांप जैसी चाल में वो छंद पढ़ा जाता है। 12 अक्षर होते हैं उसमें और 4 यगण होते हैं। भुजंग प्रयातम चतुर्भिर यकार, ये छंद का लक्षण है। कुछ विद्यार्थियों को हमने छंद शास्त्र पढ़ाया था, पता नहीं आज वो उसका कितना उपयोग कर पा रहे हैं। और वो एक तकनीक है, आप उसको सीख सकते हैं, सभी लोग सीख सकते हैं। तो उससे आप मात्राओं की गणना तो सीख ही चुके हो, अब गणों का विन्यास अगर आप सीख जाएं तो फिर काव्य रचना करने लग जाओगे। बस यह है कि जो काव्य कला है उसके लिए आपके पास एक प्रतिभा की अपेक्षा होती है। अब वो प्रतिभा जो है उसमें आपको सुंदर शब्दों को उन गणों में, उन मात्राओं में, उन लघु गुरु अक्षरों में स्थापित करना होता है और काव्य रचना हो जाती है। एक बार कहीं जबलपुर में पूज्य ज्ञान सागर महाराज श्री की स्मृति का आयोजन था, स्मृति दिवस था उनका, और बड़े भारी मंच में फुहारा पर, फुहारा नाम का एक स्थान है, बड़ा फव्वारा बोलते हैं उसको, कमानिया गेट के पास, वहां पर संचालक महोदय जो थे अजित कुमार जैन वकील साहब, उन्होंने, हम लोग बैठे थे वहां पर मंच पर, और उन्होंने एक ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया कि देखो इन्होंने दुनिया में कुछ देखा नहीं, छोटी छोटी उम्र में त्यागी बन गए और इधर संन्यास मार्ग पर चल पड़े हैं। तो इस बात को सुनकर हमें ऐसा लगा कि उम्र से त्याग, वैराग्य और ज्ञान का जो संबंध बड़े लोग जोड़ते हैं, वास्तव में कोई ऐसा अनिवार्य नियम नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य और त्याग का संबंध उम्र के साथ ही हो। कभी कभी कोई बात छोटी उम्र में समझ में आ जाती है और कभी कभी कोई बात बड़ी उम्र में भी समझ में नहीं आ पाती। तो आप ज्ञान को आयु के साथ नहीं बांध सकते, वैराग्य को भी नहीं बांध सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि बाल पक जाए, कमर टेढ़ी हो जाए, कानों से सुनाई देना बंद हो जाए, उच्चारण ठीक से न हो पाए, आंखों से पढ़ना मुश्किल हो जाए, तब किसी को वैराग्य हो। ऐसा नहीं है। वैराग्य के अनेक निमित्त बन जाते हैं और जीवन मुड़ जाता है। जिनेंद्र वर्णी जी कहते थे, हम उनको अपना धर्म गुरु इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके प्रवचनों को पढ़कर हमने जैन धर्म को समझा और हमारे अंदर दीक्षा की भावना हुई। उनका कहना था कि प्रत्येक मानव के जीवन में एक मोड़ आता है, उस मोड़ पर मुड़ने वाला जीवन को निखार लेता है और न मुड़ने वाला दलदल में फंस जाता है। वैराग्य के पल सबके जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आते हैं, पर कोई अगर उनको टाल दे, उनका आलंबन लेकर अपने को सही दिशा न दे, तो फिर वो पल गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। तब हमने कुछ पंक्तियां लिखी थी और वहीं मंच में हमने उसको राग शिवरंजनी, मिश्र शिवरंजनी में सुनाया था। उसको सुनकर अंदर के ताल झंकृत हो जाते हैं। शब्दावली भी ऐसी है, राग भी ऐसी है। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, यह सुअवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। ये घटना सन 92 की है, संभवतः लगभग मई का माह महीना चल रहा होगा, उस समय की घटना है। तो कविवर पंडित दयानंद राय जी ने इस स्तुति में, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में कुछ पंक्तियां ऐसी लगी लिखी है जिन पंक्तियों पर वर्तमान के कुछ विद्वानों का आक्षेप होता रहता है, वो उस पंक्ति को अस्वीकार करते हुए उसके विरोध में कुछ बोलते रहते हैं। जैसे वो कहते हैं कि क्या कर्तावाद भर के रख दिया, भगवान जिनेंद्र तो वीतराग है। यानी उनका ये कहना है कि कविवर पंडित ज्ञानत राय जी को ये पता नहीं था कि भगवान वीतराग है, और उन्होंने वीतराग स्वरूप को विकृत कर डाला, भगवान के वीतराग स्वरूप को विकृत कर डाला और ऐसी पंक्तियां लिख दी जो पंक्तियां भगवान में घटित नहीं हो सकती। जिनेंद्र भगवान में वो पंक्तियां लागू नहीं हो सकती, ऐसा उनका अभिमत है। वो पंक्तियां कौन सी है देखें अपन। नहीं, वो हम जो मई का हमने बताया ना, लगभग मई माह बोला था हमने, पर नहीं, 1 जून की तारीख थी वो, जबलपुर में 1 जून को जेठ अमावस्या के दिन ये बात आई थी, ये काव्य रचना हुई थी, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। और संयोग ऐसा था कि देखिए सन 73 में 1973 में जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री की संलेखना संपन्न हुई तब भी तारीख 1 जून ही थी। 73 और ये 92, ऐसा देखा गया है कि 19 इयर्स बाद तारीख और तिथि प्रायः करके, मतलब अधिकतर रिपीट होती है, वही रहती है। पता नहीं क्या संयोग है, पर संयोग की बात ऐसी है कि 19 साल बाद जो वार वार अलग हो जाएगा, वार वो रहे ऐसा नियम नहीं है, लेकिन तारीख और तिथि लगभग एक समान रहती 19 वर्षों में, और 28 वर्षों में वार और तारीख रिपीट होते हैं। 28 वर्ष हो जाते हैं तो तारीख और वार ज्यों के त्यों वैसे ही हो जाते हैं। तिथि और तारीख का योग 19 वर्षों का है, वार और तारीख का योग 28 वर्षों का है। तो वो पंक्तियां कौन सी अपन देखते हैं जिसमें भगवान की स्तुति करते हुए, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए विद्वान लिख रहे हैं, अपुत्रीन को तु भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को तु दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, अपुत्रीन को तु भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, तू ही दुख हरता तू ही सुख करता। ये पंक्तियां जो है ये वर्तमान के कुछ तथाकथित ज्ञानी जनों को आपत्तिजनक लगती है, और उनको ऐसा लगता है कि ये सब कर्तावाद भर के रख दिया है भगवान की स्तुति में, जबकि भगवान अकर्ता है, वीतराग है, वो किसी के कर्ता हर्ता नहीं है, वो दाता त्राता नहीं है, वो तो सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सबको जानते हैं, सब ज्ञेयों के ज्ञायक है, तब भी निजानंद रसलीन, अपने आनंद में, अपने आनंद रस में लवलीन है, तल्लीन है। अब देखिए ऐसी स्थिति कब बनती है, ऐसी स्थिति तब बनती है जब अपन शास्त्र की एक बात का आग्रह पकड़ लेते हैं और दूसरी बात को या तो पढ़ते नहीं है अथवा पढ़कर भुला डालते हैं, तब ये स्थिति बनती है। और यही कारण है कि आज हम आचार्य कुंदकुंद स्वामी के वचन जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि अपन ने मूलाचार ग्रंथ में देखा कि भगवान रत्नत्रय के उपदेष्टा है, वो उस उपदेश के दाता है, एक बात। फिर सर्वार्थ सिद्धि में देखा कि वो अभयदानी है और अनंत प्राणियों के समूहों के लिए वो अभयदान प्रदान करते हैं, दो बातें होगी। फिर अब आचार्य कुंदकुंद स्वामी क्या कह रहे हैं उस पर अपन दृष्टिपात कर लें, जिससे कि अपन सभी शास्त्रों में से संग्रह करके भगवान को पहचान सके। चरणानुयोग के ग्रंथ, द्रव्यानुयोग के ग्रंथ, फिर ये अध्यात्म ग्रंथ के रचनाकार आचार्य कुंदकुंद स्वामी का वाङ्मय, इन सब में अपन भगवान के बारे में जो जो जानकारी मिल रही है उसका संग्रह क्यों ना कर लें। जैसे अभी इतने दिनों से अपन यही तो कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से अपन अरहंत भगवान के विषय में जानकारियों को एकत्रित कर रहे हैं, जिससे कि अरहंत के स्वरूप के विषय में अपने अंदर कोई भी भ्रांति ना रह जाए, अपन किसी दुराग्रह में ना अटके रहे। तो कविवर पंडित ज्ञानत राय जी ने जो ये पंक्तियां लिखी है, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, तू ही दुख हरता तू ही सुख करता। लगता तो है कि बिल्कुल कर्तावाद इसमें भरा हुआ है, भगवान को अकर्ता से कर्ता बना दिया। तो अपन थोड़ा विचार करते हैं कि क्या भगवान सचमुच अकर्ता हैं, और यदि है तो किस नए की अपेक्षा से है? क्या निश्चय नए और व्यवहार नए दोनों नयों से भगवान अकर्ता हैं? ऐसा मानने पर भगवान ने जो उपदेश दिया उस उपदेश के भी भगवान अकर्ता है ऐसा मानना पड़ेगा, यानी दिव्य ध्वनि भगवान की नहीं है यह स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि दिव्य ध्वनि भगवान की नहीं है तो फिर भक्तों को उस दिव्य ध्वनि से क्या लेना देना, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी? अवश्य होगी। तो फिर यहां पर यह कहना पड़ेगा कि भगवान निश्चय से अकर्ता है, व्यवहार से करता है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। अपन ने नयों की विवक्षा के साथ कथन किया, अब तो कोई अड़चन नहीं है। व्यवहार से वो करता है हरता है, दाता है, त्राता भी है, व्यवहार से मानने में कोई आपत्ति है क्या? किसके हरता है व्यवहार से? करता है, उपदेश के कर्ता हो गए, ठीक है, उपदेश के दाता भी हो गए। फिर हरता किसके हुए? तुभ्यं नमस् त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। त्रिभुवनार्ति तीनों जगत की पीड़ा के हर्ता भी है। किस नए से? व्यवहार नए से, निश्चय नए से नहीं है। फिर त्राता, त्राता है कि नहीं भगवान? त्राता का अर्थ क्या होता है? रक्षक। यदि त्राता न हो भगवान तो तत्वार्थ वार्तिक में भट्टाकलंक देव ने, आचार्य अकलंक भट्ट ने, पंच परमेष्ठियों को अलौकिक शरण कहा है। वो लौकिक रक्षक नहीं है, अलौकिक रक्षक है ऐसा कहा है। लौकिक रक्षक कौन है? तो लौकिक रक्षक में उन्होंने राजा, देवता और अपने जो अभिभावक माता पिता हैं उन सबको रक्षक माना गया, पालक माना है। अकलंक देव ने उसमें पालक माना, उनको रक्षक माना है। तो व्यवहार नहीं सही तो ये कथन हुआ ना। और यदि आप इस बात को फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है? प्रश्न ये है कि आप में से जितने लोग दर्शन पाठ पढ़ते हैं मंदिरों में, अब दर्शन पाठ में जो श्लोक आता है उसका स्मरण करिए और हमें बताइए कि इस श्लोक में क्या कहा गया है। श्लोक हम आपको स्मरण दिलाते हैं, नहि त्राता नहि त्राता नहि त्राता जगत्रये वीतरागात् परो देवो न भूतो न भविष्यति। हिंदी अर्थ बता देते हैं, वीतरागात परह देवह, वीतराग देव अर्थात जिनेंद्र देव, उनसे परह देव अन्य जो दूसरे आराध्य हैं वे नहित्राता रक्षक नहीं है, रक्षक नहीं है, रक्षक नहीं है। फिर अतीत में थे क्या? न भूतकाल में वो रक्षक थे। वीतराग भगवान को छोड़कर अन्य जो आराध्य हैं वो वर्तमान में रक्षक नहीं है, भूतकाल में रक्षक नहीं थे, न भविष्यति और न भविष्यकाल में रक्षक होंगे। इस श्लोक का अर्थ क्या निकला? अर्थ यही निकला ना कि वीतराग भगवान को छोड़कर अन्य कोई तीनों कालों में, और जगत त्रय भी लिखा है, और तीनों जगत में न तो रक्षक हैं, न रक्षक थे और न रक्षक होंगे। तो तीनों काल और तीनों जगत में रक्षक कौन हुए? वीतराग देव हुए। तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान रक्षा नहीं करते, भगवान रक्षक नहीं है? व्यवहार ने से इस बात को स्वीकार करना होगा कि वीतराग परमात्मा, वीतराग देव, देव जो है यहां परमात्मा का वाचक है, ध्यान में रखना, यानी आराध्य परमात्मा भी होते हैं, अंतरात्मा भी होते हैं, लेकिन यहां पर वैसे तो आराध्य परमात्मा को ही माना गया है। जैसे आचार्य महाराज ने, यद्यपि अपन आचार्य उपाध्याय साधु गुरुओं की आराधना भी करते हैं, पर प्रधानतया अथवा परमार्थ दृष्टि से आराध्य तो परमात्मा है, और आचार्य उपाध्याय साधु भी उनके आराधक हैं, ये स्मरण में रखना है। आराध्य के आराधक हैं। तो वीतराग परमात्मा ही रक्षक हुए। तो दाता, त्राता, कर्ता, हर्ता, ये चारों बातें तो आचार्यों ने स्वीकार की है अरहंत भगवान में। कर्ता के बारे में देखो आप, उपदेश के कर्ता छोड़ो आप, चलो उपदेश के दाता बोल देते हैं अपन, क्योंकि अपन ने पढ़ा वही था कि उपदेश देते हैं। अब कर्ता की बात आती है दिव्य ध्वनि की अपेक्षा से, ठीक है अपन ने कर्ता घटित किया उनको, लेकिन अपन और दूसरे सरल उदाहरण की ओर जाते हैं। आपको सबको एक श्लोक कंठस्थ, एक काव्य कंठस्थ है उपजाति छंद में, स, संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। अंतिम पंक्ति सब आप लोग तीन बार बोलते हैं, हमने सुना है। क्या अर्थ है इसका? संपूजकानाम, सम्यक पूजा करने वालों के लिए, प्रतिपालकानाम रक्षा करने वालों के लिए, यतीन्द्र सामान्य तपोधनानाम, यतीन्द्र यानी आचार्य और सामान्य तपोधन यानी संगस्त साधु। तो आचार्य और उनके संगस्थों के लिए, देशस्य देश के लिए, राष्ट्रस्य राष्ट्र के लिए, पुरस्य नगर के लिए, राज्ञः शासक के लिए, राजा के लिए, भगवान जिनेन्द्रः, जिनेन्द्र भगवान, शांतिम करोतु, शांति को करें। भगवान यदि अकर्ता होते तो फिर ऐसा श्लोक, ऐसा काव्य क्यों बना जाता और आप सब अपने मुंह से क्यों बोलते? इसका मतलब यह है कि मुंह में कुछ और है और दिल में कुछ और है। दिल में भगवान को अकर्ता मान रहे हो और मुंह से बोल रहे हो भगवान सबकी शांति करो। अब भगवान अगर अकर्ता होते व्यवहार न से भी, तो फिर संबंधभद्र आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? संबंधभद्र आचार्य महाराज आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, सविश्व चक्षुर वृषभोर्चितः सताम समग्र धीरु। नहीं, ये तो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति के पद आ गए। अच्छा, हाँ, सविश्व चक्षुर वृषभोर्चितः सताम, फिर उसके बाद की पंक्ति समग्र विद्यात्म वपुर निरंजन पुनातु चेतो मम नाभिनंदनो जिनो जितक्षुल्लकवादि शासन। हमसे जो भूल होती है उसके लिए हम जिनवाणी माता से क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमें एक बात की प्रसन्नता भी होती है कि हम भूल जो कर रहे हैं उसको जानकर जो हमारे श्रोता लोग हैं उनके अंदर ये धारणा बनती है कि महाराज से भी भूल होती है, हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता होती है। हम ये नहीं चाहते कि आप लोगों में ऐसी धारणा बने कि आप हमें कहीं बहुत ऊपर बैठाल दो, इसलिए हम ये भूल जब हम आपके सामने करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पर हम जिनवाणी से क्षमा मांगते हैं, भूल होनी नहीं चाहिए कायदे से। आचार्य संबंधभद्र स्वामी कह रहे हैं कि सब विश्व चक्षु हूं, वे प्रसिद्ध वृषभ नाम भी लिया उन्होंने, वृषभ देव विश्व चक्षु से, संपूर्ण विश्व के लिए एक आंख के समान थे। भगवान जो कह रहे हैं उससे आप विश्व को देखो, सब कुछ दिख जाता है। क्या अद्भुत विशेषण है। और सताम अर्चित, सत्पुरुषों के द्वारा अर्चित थे। दुर्जन तो पास ही नहीं आते थे, तो उनकी बात ही छोड़ दो, जो सज्जन थे वो उनकी अर्चना करते थे। और समग्र विद्यात्म वपुर निरंजन। समग्र विद्या कहते हैं केवल ज्ञान को। वह केवल ज्ञान उनका शरीर था, यानी भगवान जो थे वो ज्ञान शरीर ही थे। और कैसे थे? निरंजन, घातिक कर्मों के अंजन से रहित थे। आचार्य सुमंत भद्र स्वामी कह रहे हैं, नाभिनंदन, वे नाभिराय के नंदन अर्थात सुपुत्र थे। तो ऐसे वृषभ जिनेन्द्र, मम चेतो पुनातु, मेरे चेतस को अर्थात मेरे अंतस को, मेरे मन को पुनातु पुनीत करे। क्या अकर्ता से ऐसी प्रार्थना की जा सकती है? पुनीत करेगा अर्थ क्या हुआ? पुनीत का अर्थ जानते हैं आप? पवित्र। समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि वृषभ जिनेन्द्र मेरे मन को पवित्र करें। यदि भगवान अकर्ता होते तो ऐसी प्रार्थना क्यों करते? जिनो जितक्षिल्लक वादी शासन, वे जिन थे, इस बात को भी आचार्य स्वीकार कर रहे हैं, सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी, फिर भी उनको कर्ता मान रहे हैं। अकर्ता मान करके क्या ऐसी प्रार्थना समंत भद्र स्वामी कर सकते थे कि मेरे मन को पवित्र करो? जिनो जितक्षुल्लक वादी शासन, वो जिन क्यों थे? क्योंकि उन्होंने छोटे मोटे वादियों के शासन को जीत लिया था, कर्मों को जीत लिया था, विकारों को जीत लिया था। ऐसे जिनेन्द्र भगवान, मेरे मन को पवित्र करो। फिर उन्हीं समंतभद्र स्वामी ने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, क्या लिखा है? स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतेर विधाता शरणंगतानाम भूयाद भव क्लेश भयोप शांति शांतिर जिनो मे भगवान शरण्य। मे शरण्य भगवान शांति, मेरे शरण्य भगवान शांतिनाथ। शरण्य का अर्थ होता है शरण में आने वाले को निभाने वाले। जो भगवान को रक्षक मान करके उनकी शरण अंगीकार करते हैं, उनको निभाने वाले शरण्य कहलाते हैं, भगवान शरण्य। मैं भयोप शांति, मेरे भयों की शांति के लिए हो, वे शांतिनाथ भगवान। भूयात भवक क्लेश भयोप शांति, और भय किसका है मुझे? भवक क्लेश का, संसार के कष्टों का मुझे भय है कि चार गतियों में मुझे भटकना पड़े, इसका मुझे डर है। अभी जो वर्तमान में कर्म के फलस्वरूप, कर्म के उदय से जो होने वाला दुख है, उसका डर नहीं है, चार गतियों में भटकने का डर है मुझे। तो शांतिनाथ भगवान मेरे उस भय को शांत करें। और शांतिनाथ भगवान के विषय में एक बड़ी सुंदर बात लिखी उन्होंने, स्वदोष शांति अभितात्म शांति। उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर शांति उत्पन्न कर ली, अपने आप को उन्होंने शांत कर लिया। कैसे किया? स्वदोष शांत्या, अपने दोषों को शांत करके उन्होंने अपनी आत्मा को शांत कर लिया। अब अपने आप को तो शांत कर लिया, ये तो ठीक है। एक द्रव्य पर द्रव्य का कर्ता नहीं होता, अर्थात एक द्रव्य अन्य द्रव्य की पर्यायों का स्वामी नहीं होता, यह परिणमति सकर्ता, द्रव्य परिणमन करके एक पर्याय को छोड़ दूसरी पर्याय को प्राप्त होता है, जो दूसरी पर्याय प्राप्त हुई है उस पर्याय का कर्ता वह द्रव्य होता है। इस अपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय का कर्ता नहीं होता, क्योंकि उसकी पर्याय का कर्ता वो द्रव्य होगा। तो निश्चय से प्रत्येक द्रव्य पर द्रव्य का अकर्ता है। तो भगवान ने अपने अंदर शांति प्राप्त कर ली, यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए वो शांति के कर्ता है, ये बात समझ में नहीं आती। भले ही करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र, जमाना गुजर गया बोलते बोलते, जब भी शांति धारा होती है अंत में यही काव्य पढ़ते हैं, और ये काव्य जैसे ही प्रारंभ होता है सबके मुंह भी बोलना प्रारंभ कर देते हैं, करो तु शांतिम भगवान जिनेन्द्र, तीन तीन बार करो तु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। आचार्य समन्तभद्र स्वामी क्या कह रहे हैं यहां स्वयं पुस्तोत्र में, स्वदोष शांत्या भीतात्म शांति, अपने दोषों को शांत करके जिन्होंने अपने भीतर शांति पैदा कर ली। शांतिर विधाता शरणम गतानाम, शरणम गतानाम शांतिर विधाता। अब ये दूसरी पंक्ति विचारणीय है, और ये कोई अज्ञानी जीव के वचन नहीं है, ये संपूर्ण भारत में जिन शासन का डंका बजाने वाले अत्यंत प्रभावशाली शूरवीर आचार्य समन्तभद्र के वचन है। क्या कह रहे हैं, शरणं गतानां शांतिर विधाता, शरणागतों के लिए जो शांति के विधाता है, विधाता का अर्थ क्या होता है, कर्ता, वी उपसर्ग लगा दे डुधाय धारण पोषणीय धातु में तो वो डुक्रिय करने का वाचक हो जाता है, व्याकरण के अनुसार विधाता का अर्थ कर्ता है, तो वो शांति के कर्ता है, आचार्य समन्तभद्र स्वामी कह रहे हैं। तो अब आपको ये लगाना होगा कि किस नए से करता है, व्यवहार नए से, और व्यवहार नए सर्वथा मिथ्या नहीं होता, उसको निश्चय की अपेक्षा अभूतार्थ कहा गया है। व्यवहार नए अगर सर्वथा मिथ्या होता तो भगवान ने व्यवहार नए से जो 20 प्ररूपणाओं का वर्णन किया है जीवों की, जो 148 कर्मों का वर्णन किया है, वो सब मिथ्या हो जाएगा। तो भगवान का उपदेश व्यवहार नए को सर्वथा मिथ्या मानने पर मिथ्या प्रमाणित हो जाएगा, पर ऐसा संभव नहीं है। व्यवहारण नय सद्यपि प्राक् पदव्याम मिह निहित पदानाम हंत हस्तावलंबः। समय पाहुड़ ग्रंथ की जो आत्मख्याति टीका है उसके रचनाकार आचार्य अमृतचंद्र सूरी हैं, उन्होंने समयसार कलश काव्यों की रचना बड़ी सुंदर की है। चौथे काव्य में आचार्य कह रहे हैं कि व्यवहार ने इस मार्ग पर जिन्होंने कदम रखा है उनके लिए हाथ का सहारा है। तदपि परम अर्थम चित चमत्कार मात्रम, पश्यताम नैश किंचित। निर्विकल्प समाधि में जो स्थित है, जो शुद्धोपयोगी हैं, उनके लिए उतने काल के लिए व्यवहार नए कोई वस्तु नहीं है। तो जिस व्यवहार नए की अपेक्षा शुद्धोपयोगी को छोड़कर सारे जीव आत्मकल्याण में तत्पर होते हैं, उस व्यवहार नय को सर्वथा असत्य नहीं माना गया है। जब अपन शास्त्रों की कारिकाओं का आलोड़न करते हैं तो बात में से बात निकलती चली जाती है। प्रोफेसर लक्ष्मीचंद जी कहते थे, ज्यों कदली के पात में, पुराना दोहा है उनके मुख से सुनने को मिलता था। ज्यों कदली के पात में, पात पात में पात, त्यों विदुजन की बात में, बात बात में बात। जैसे केले का जो तना होता है उसमें से आप ऐसे निकलते चले अंदर, पात पात में पात निकलेगा, निकलते ही चला जाएगा। इसी प्रकार अपन शास्त्रों की बात करते चले जाते हैं तो वो जो विदुजन है, पूर्वाचार्य, उनकी बात में बात बात में बात निकलती चली जाती है। तो आज के इतने वर्णन का सारांश ये निकला कि जिनेंद्र भगवान निश्चय ने से अकर्ता है, अदाता है, अत्राता है और अहर्ता है। न द्राता है, न दाता है, न त्राता है, न करता है, न हरता है, निश्चय ने से। लेकिन व्यवहार ने से ये चारों व्यक्तित्व जिनेंद्र भगवान में सामान्य प्राणियों की अपेक्षा चरम सीमा को प्राप्त है। भगवान सर्वोत्कृष्ट दाता है, भगवान सर्वोत्कृष्ट त्राता है, भगवान सर्वोत्कृष्ट करता है और भगवान सर्वोत्कृष्ट हरता है। ये बात व्यवहार ने से आचार्यों ने स्वीकार की है। और अब आचार्य समंतभद्र स्वामी की वाणी में अपन चले गए थे बीच में, आचार्य कुंदकुंद स्वामी के जो वचन थे वो आज अपन नहीं ले पाए, उसको अपन आगामी सत्र में देखेंगे। ओम नमो रते भगवते तीर्थकृते अर्हते परम भट्टारकाय महादेवाधिदेवाय जिनेन्द्र परमेष्ठिने अनर्घ्यपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ऐं अर्हम सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्यध्वनि रूपायै स्याद्वाद केतनायै अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन्मात्र स्वरूपायै भगवती जिनवाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रूं ह्रौं ह्रः आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठिभ्यः अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। कायोत्सर्ग।